दिल्ली की तीन नगर निगम को एक बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए प्रस्ताव पर मंगलवार को राज्यसभा ने भी अपनी मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही दक्षिण, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को एक कर दिया जाएगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में संसद को बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,
आप पार्टी की चुनी हुई सरकार के सौतेले माँ जैसे व्यवहार के कारण ये निगम ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, तीनों निगमों के बीच में नीतियों के रूप में समानता लाना बहुत जरूरी है। कार्मिकों की सेवा की शर्तों के लिए भी समानता होना बहुत जरूरी है। आर्थिक संसाधन की प्राप्ति और उनके दायित्वों के बीच में भी संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों निगमों को एक कर पूर्ववत स्थिति बहाल की जाए। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ।
गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी मरलीना कहती हैं,
दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? सिर्फ एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देती, 488 रुपए प्रति व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, और वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है।
जहां दिल्ली नगर निगम को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने है, तो वहीं चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। दरअसल पंजाब विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को राज्य में शामिल कराने का प्रस्ताव पिछले दिनों पारित हुआ था। इसके जवाब में हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र मंगलवार को बुलाया गया था। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ छोड़ने के बदले कुछ शर्तों का उल्लेख किया।
हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें एसओएल का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है।
लगे हाथ हरियाणा अपने लिए अलग हाईकोर्ट की मांग भी कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बारे में कहते हैं,
आज चंडीगढ़ में हमारा अलग हाई कोर्ट हो, इसकी भी हमने उसमें डिमांड रखी है कि चंडीगढ़ का हमारा जो अधिकार है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हमारा अलग से यहाँ स्थापित हो, इसकी मांग भी हमने उस रेजोल्यूशन में की।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों चंडीगढ़ में पंजाब सर्विस रूल की जगह केंद्र का सर्विस रूल लागू किया था। पंजाब को यह निर्णय पसंद नहीं आया। इसके बाद से ही चंडीगढ़ पर दावे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर भी राजनीति गर्माई हुई है। महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों दलों ने केंद्र सरकार पर ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत की कुछ संपत्ति को कुर्क किया गया। इससे भड़के संजय राउत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा,
जहां मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ एक एकड़ भी जमीन नहीं है और वो सभी हम हमारे हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ, उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। इसी घर में आकर लोग बोल कर गए, उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले वाले से नहीं है, चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बालासाहेब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा।
मंगलवार को ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के विरुद्ध भी ईडी की कार्रवाई हुई। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। और अब चर्चा रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की, जिस पर भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में भारत अब तक रूस के विरुद्ध मतदान से बचता रहा है। हालांकि बूचा में हुए नरसंहार को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग भारत ने भी की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने बूचा नरसंहार की निंदा करते हुए कहा,
Recent reports of civilian killings in Busha are deeply disturbing. We unequivocally condemn these killings and support the call for an independent investigation. We hope the international community will continue to respond positively to the humanitarian needs. We support calls urging for guarantees of safe passage to deliver essential humanitarian and medical supplies. Keeping in view the dire humanitarian situation in Ukraine, India has been sending humanitarian supplies to Ukraine and its neighbors, which include medicines and other essential relief material. We stand ready to provide more medical supplies to Ukraine in the coming days.
भारत कूटनीति के जरिए संकट के समाधान की वकालत करता रहा है और अब भी इसी पर जोर दे रहा है। और चलते चलते बात एक ऐसे संकट की जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं, यानी महंगाई की। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसका असर आम उपभोक्ता वस्तुओं पर भी पड़ रहा है। कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। पिछले 2 हफ्तों में ही 9 रुपए की वृद्धि का बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ा है। वैसे आश्चर्य इस बात का है कि कंगाली की हालत में पहुंच चुके श्रीलंका और पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत भारत के मुकाबले बहुत कम है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।